ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। असीम जी हिंदी अंग्रेजी राधा कुंद माता जी यू अंडरस्टैंड हिंदी यू आर इंडियन एनीवे। तो आज हम लोग भागवत महापुराण से पढ़ेंगे। पांचवा स्कंद अध्याय 14 श्लोक 6। तत्र च क्वचित् आतप उदक निभाना। विषयान् उपधावति पाना भोजना व्यवाय आदि व्यसना लोलुपः। च क्वचित् आतपोदक निभान विषया अनुपधावती पान भोजन व्यवायादि व्यसन लोलुप। तत्र है हिंदी 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 चाहिए किताब कहां है। तत्र वहां इस संसार में च भी क्वचित कभी कभी आतप उदक निभान मरुस्थली में जल के सदृश विषयान विषय वस्तुओं को विषय वस्तुओं के लिए उपधावती दौड़ता है पाना पीने के लिए भोजन खाने के लिए व्यवाय विषय वासना की पूर्ति के लिए आदि इस प्रकार से व्यसन व्यसित लोलुपः लोलुप व्यक्ति। 14 विषयी व्यक्ति। अनुवाद बद्ध जीव कभी कभी इस गंधर्व पुरी में खाता पीता और स्त्री प्रसंग करता है। अत्यधिक लगाव के कारण इंद्रिय सुखों के पीछे वह उसी प्रकार दौड़ता है जैसे मरुस्थल में मृग तृष्णा के पीछे हिरण। तात्पर्य जगत दो प्रकार के हैं, वैकुंठ जगत और भौतिक जगत। भौतिक जगत मृग मरीचिका के तुल्य असत्य है। मरुस्थल में पशु यह सोचते हैं कि उन्हें जल दिखाई पड़ रहा है, किंतु वह वास्तव में जल नहीं होता। इसी प्रकार जो पशु मृत्यु वाले हैं वे भौतिक जीवन के मरुस्थल के भीतर ही शांति ढूंढने का प्रयास करते हैं। विभिन्न शास्त्रों में यह बारंबार कहा गया है कि इस भौतिक संसार में कोई इंद्रिय सुख नहीं है। पुनश्च यदि हम सुख के बिना रहना स्वीकार कर लें तो भी हमें ऐसा नहीं करने दिया जाता। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि यह भौतिक संसार न केवल दुखों से पूर्ण दुखालय है वरन क्षणिक अशाश्वतम भी है। यदि हम दुखों के बीच रहना भी चाहें तो प्रकृति हमें ऐसा नहीं करने देगी। यह हमें अपने शरीर को बदलकर अन्य दुखमय स्थिति में प्रविष्ट करने के लिए बाध्य कर देगी। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भूतैर्महद्वीयैमा पुरो विवो निर्मायसेते अदमोऽस पुरुषम्। भुक्ते गुणांशो दशषोडशात्मकम् शोलम् कृषिष्ठम् भगवन् वचांसि मे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये। कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुवैव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणवामि हरि प्रिये। भावराधिका माधुरी अस्वादे सुखकाज जयति कृष्ण चैतन्या कलि प्रकटे ब्रजराज। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चतुर्दशे भवारण्यः रूपकं व्याकृति कृता प्रस्तुते तस्य गोमायुं सकारार्थं कल्पनम्। सुभाषिय स्वामी कहते हैं कि यह जो 14वां अध्याय है इसमें एक रूपक के द्वारा एक उदाहरण के द्वारा, एक बुझौल के द्वारा सुखदेव गोस्वामी जीव के गति को बतलाए हैं कि किस प्रकार से जीव इंद्रिय तृप्ति में फंस करके और विभिन्न प्रकार के कल्पना के ऊपर कल्पना कर करके दुख भोगता है। वो सोचता है कि दुख को मैं खत्म करता हूं, लेकिन वो भूल जाता है कि वह दुख को बढ़ाता है। इस अध्याय को भव अरण्य रूपक के द्वारा बताया गया है। संसार को भव संसार, जहां पर जन्म मृत्यु जरा और व्याधि है, और अरण्य मतलब जंगल। इस संसार जंगल है, और जंगल में कौन रहता है? खूंखार जानवर रहते हैं, खूंखार जानवर रहते हैं। और कोई व्यक्ति ऐसे खूंखार जंगल में चला जाए तो स्वाभाविक है कि उसे डर लगेगा। एक तो अनजान स्थान है, दूसरा खूंखार जानवर है, तो स्वाभाविक है कि डर लगेगा। इस रूपक के द्वारा वैसे ही जीव इस भव संसार में, जो कि इंद्रियों तृप्ति में फंसा रहता है और विभिन्न प्रकार का भय प्राप्त करता है। तो इस श्लोक से पहले पीछे का जो गद्य है उसमें बताया गया है, उपन्नार्थः गंधर्वलोक गंधर्व नगरम उपन्नम इति मिथ्या दृष्टि अनुपश्यति अनुपश्यति। वह व्यक्ति इस संसार में, इस संसार को नरलोक कहा गया है, और इस नरलोक की तुलना की गई है गंधर्व नगरम, गंधर्व नगर से, यानी काल्पनिक शहर, कल्पना में जीना। आजकल लोग उसे कहते हैं डे ड्रीम, एक नाइट ड्रीम होता है और एक डे ड्रीम होता है। दोनों ड्रीम परिवर्तनशील है, मिथ्या है, सत्य नहीं है, दोनों ड्रीम। लेकिन नाइट ड्रीम में कम से कम इंद्रियां काम नहीं करती है, सोए पड़े रहते हैं। लेकिन हम लोग डे ड्रीम में जब ड्रीम देखने लगते हैं तो सामने भी जो दिखाई पड़ता है वो दिखाई नहीं पड़ता है। पश्यमपि न पश्यति, देखते हुए भी हम देख नहीं पाते हैं। ऐसे ही कभी कभी हमारे भक्तों के साथ होता है। मैं कानपुर में यही लेक्चर दे रहा था कि भक्त लोग देख रहे हैं कि लाइट जल रहा है, दिन का 12 बज गया है, लाइट जल रहा है, फिर भी वे डे ड्रीम में ऐसे लगे हुए हैं कि पश्यम अपि न पश्यति। वो देख रहे हैं लाइट जल रहा है लेकिन देख नहीं रहे। वो लाइट प्रभु भगवान की संपत्ति है, लाइट जल रहा है उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए। ये है कृष्ण कॉन्शियसनेस। पानी गिर रहा है, ये हमारा काम नहीं है, टेम्पल कमांडर काम है। पश्यम अपि न पश्यति, देख रहे हैं कोई वस्तु बर्बाद हो रही है, चुप बैठेंगे, हमारा काम नहीं है, प्रेसिडेंट काम है। पश्यम अपि न पश्यति, देख करके भी नहीं देखते हैं। प्रमत्त निधनम, इंद्रिय तृप्ति इतने ग्रॉस हो जाते हैं कि पश्यम अपि न पश्यति। तो डे ड्रीम में रहते हैं, डे ड्रीम में, और डे ड्रीम आश्रित प्रवृत्ति है जिसका वर्णन भगवत गीता के 16वें अध्याय में किया गया है। डे ड्रीम में रहने वाला व्यक्ति जो हाथ में रहता है उसको भी गंवा डालता है। रात में ड्रीम देखते हैं तो सुबह होकर के सोच लेते हैं कोई बात नहीं, वो सपना था, वो मिलने वाला नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति डे ड्रीम देखता है, नहीं मिलने की बात ही प्रयास करता है, रात के ड्रीम को सपना समझकर छोड़ देता है, लेकिन दे ड्रीम को पकड़ कर रखता है। हम लोग छोटे थे तो आई थिंक मिडिल स्कूल में एक इंग्लिश में एक स्टोरी था कि एक लड़की थी, वो अंडा बेचने जाती थी। मैं पहले भी कह चुका हूं, तो वो सोचती थी कि आज मैं अंडा बेचूंगी तो इतना रुपया मिलेगा, जो रही थी उस रुपये से बकरी खरीदूंगी, फिर बकरी के दो चार पांच बच्चे हो जाएंगे, बड़ा परिवार बकरी का हो जाएगा, तो सबको बेच करके एक गाय खरीदूंगी। सिर पर अंडा लेकर के जा रही है बेचने के लिए और सोच रही है, डे ड्रीम देख रही है। फिर सोचा कि गाय जब थोड़ा ज्यादा हो जाएंगे तो गायों को बेचूंगी तो कुछ पैसा मिलेगा तो खेत खरीदूंगी, बैल होंगे, खेती होगी, घर होगा, उसके बाद एक अच्छे ब्रह्मचारी से शादी कर लूंगी, अच्छे लड़के से शादी कर लूंगी। जब शादी कर लूंगी तो फिर अंडा बेचने क्या फायदा, वो अंडा तुरंत बूम फेंक दिया, बस परिवार अच्छा हो गया, अंडा फेंक दिया। तो डे ड्रीम देख रही थी लेकिन असली चीज जो उसके पास था, जो बेच करके अपना भरण पोषण कर रही थी, वो अभी वह गंवा डाली डे ड्रीम देख करके। वैसे ही हम लोग डे ड्रीम देख कर करके अपने समय और शक्ति को गंवा रहे हैं। हरी हरी विफले जन्म गंवाइया, मानुष जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विश्व खाइया। मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है नरलोके, ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है राधा कृष्ण का भजन करने के लिए, लेकिन राधा कृष्ण का भजन करने के बजाय हम लोग डे ड्रीम देखने लगते हैं। नरलोकम स्वशरीर पुत्रादि शरीरम गंधर्व नगरम गंधर्व नगरवत उत्पन्न सत्यम एवं इदम मया लब्धम इति मिथ्या दृष्टि अनित्य नित्यवान सन। जो मिथ्या वस्तु है वो भी सत्य दिखाई पड़ने लगती है इस डे ड्रीम में। यथा स्त्री पुत्र परिवार इत्यादि नित्य दिखाई पड़ते हैं, नित्यवान सन अनुपस्थिति अनित्य नित्य तपस्यति इति अर्थ। अनित्य वस्तुओं को भी जो नित्य समझने लगता है वह पागल नहीं है तो और क्या है। अनित्य वस्तुओं को भी जो नित्य समझता है प्रपश्यति, प्रशब्द सूचित अर्थांत अर्दस्यति इति तत्र इति, तब यहां से शुरू होता तत्र वहां पर। इस संसार में तत्र का मतलब है गंधर्व नगर, जिसको हम मान लिए हैं, क्या मान लिए हैं, नित्य मान लिए हैं, बस अब यही रहने वाले हैं, यही हमारा असली चीज है और यही दुख का कारण है। और यहां पर आकर के तत्र पान भोजनम देव्यादि व्यसन लोलुप क्वचित आतप उदक निधान विषयान उपधावती। इस गंधर्व लोक में आकर के हम लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं, किन किन चीज का व्यवस्था करने में लगे हुए हैं, खाने पीने के लिए, खाने पीने की व्यवस्था में लगे हुए हैं, उसके बाद जड़ेन्द्रिय के प्रति के व्यवस्था में लगे हुए हैं आदि, मतलब और कुछ गान गाना नाच सिनेमा देखना नौटंकी करना जो भी आप समाज और संसार में पागल लोग करते हैं उसी में लगे हुए हैं। व्यसन लोलुप, हम लोलुप हैं, लालची बने हुए हैं। प्रभुपाद जी यहां पर बड़ा सुंदर अर्थ किए हैं लोलुप का, हिंदी अनुवाद उसका ठीक नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं लोलुप मीन्स डिबोची,
डिबोची समझते हैं आप लोग ना,
जो अपना नहीं है, दूसरे की पत्नी है, लेकिन उसके साथ संबंध जो रखता है वो डिबोची कहलाता है। वैसे ही संसार की जितनी वस्तुएं हैं वे अपने लिए नहीं है, सब कृष्ण की वस्तु है और सब कृष्ण के प्रसन्नता के लिए है, लेकिन उन वस्तुओं को हम अपना मानते हैं। किस रूप में यूज करते हैं? पान भोजनम व्यवादी व्यसनम। इसीलिए हम लोग डिबोची हैं। लोलुपम शब्द का अनुवाद प्रभुपाद लिखे हैं डिबोची। डिबोची वह व्यक्ति जो दूसरे के वस्तु को अपना माने। तो संसार में 99.9% लोग इसी में हैं और इसी में दौड़ रहे हैं। यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उनका विषया अनुप उपधावती उपधावती, वे दौड़ रहे हैं, उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, इन वस्तुओं के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। और ये पीछे पीछे दौड़ना, इसका तुलना किया गया है उस हरिण से जो कि मरुभूमि में जब सूर्य की रोशनी बालू पर पड़ता है तो एक पानी का धारा दिखाई पड़ता है, पानी का लहर है। आतप पौधका निभान, मरुभूमि में गर्मी के चलते उदक जल दिखाई पड़ता है। सब जानते हैं कि मरुभूमि में जल नहीं मिलता है, लेकिन हिरण समझता है कि जल है और इसीलिए वह उपधावती दौड़ता है, वहां मिलेगा, वहां नहीं है, आगे 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 आगे, यही कहलाता है उपधावती। अभी नहीं प्राप्त कर लिया, फ्यूचर में प्राप्त करूंगा, और यही है उपधावती। एक बार एक व्यक्ति था, वह गया एक सेठ जी के पास, एक राजा के पास, और राजा से कहा कि देखिए मेरे पुत्री का विवाह करना है और मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, कोई धन नहीं है, आप कृपा करके हमें कुछ धन का व्यवस्था करा दीजिए। तो राजा ने कहा कि ठीक है, कल सुबह तुम उठना और सुबह उठ करके जितने पृथ्वी को तुम नाप लोगे दिन भर में उतना तुम्हारा हो जाएगा। तो बड़ा खुश हो गया कि राजा तो बड़ा दयालु है, हमको बहुत कुछ दे दिया। तो उस सुबह उठ करके चलना शुरू किया, तो चल रहा था तो कम नाप रहा था, तो थोड़ा दौड़ना शुरू किया है, थोड़ा ज्यादा नापने के लिए, थोड़ा और दौड़ना शुरू किया, 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 और 12 बजते उसका 12 बज गया, चला गया संसार से। उसको समय शाम तक मिला था, लेकिन दौड़ रहा था, थोड़ा और 12 बजते बूम गिरा और गया। तो वैसे ही संसार में भगवान दिए हैं, गॉड प्रोवाइड फॉर नीडी नॉट फॉर ग्रीडी। भगवान दिए हैं ईशावास इदम सर्वम यत्किंचित याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृह कश्च निधनम। भगवान सबके लिए व्यवस्था कर दिए हैं। जब हाथी टन टन खा सकते हैं, उनका पेट भर सकता है, हम लोगों का नहीं भरेगा? जरूर भरेगा, भगवान व्यवस्था कर दिए हैं। लेकिन और उपधावती की प्राप्ति करने में व्यर्थ मनुष्य जन्म हम लोग गंवा रहे हैं, उस हरिण के समान जो मरुभूमि अपना जीवन गंवाता है। तो प्रभुपाद जी यहां पर तात्पर्य में दो बात बताए हैं, कहते हैं कि एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है और एक मटेरियल वर्ल्ड है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड को वैकुंठ कहा जाता है, वैकुंठ यत्र तत्र वैकुंठ, जहां पर किसी प्रकार का कुंठा न हो, जहां किसी प्रकार का चिंता न हो, वह कहलाता है वैकुंठ। या जहां जाने पर कोई चिंता न रह जाए वह वैकुंठ कहलाता है। और यह भौतिक संसार यह कुंठ लोक है, इसे पवर कहा जाता है और आध्यात्मिक संसार को अपवर कहा जाता है। तो प फ ब भ और म, यही इस संसार में जो आया है उसकी यही गति है। प मतलब परिश्रम, गधा के समान खूब परिश्रम करना है, सुबह से रात तक खूब परिश्रम करो। चाणक्य पंडित कहते हैं, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशंती मुखे मृगा, मृग भले जंगल का राजा हो लेकिन उसे परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम करना है, किसके लिए करना है, क्यों करना है, ये सब उत्तर जानना चाहिए। हम परिश्रम करें गद्दा के समान, गद्दा सोचता है मैं परिश्रम नहीं करूं तो भोजन नहीं मिलेगा, अरे कितना घात पड़ा हुआ है। और फ मतलब इतना परिश्रम कि मुंह से फेन आ जाए, और ब मतलब व्यर्थता, साथ में कुछ भी जाने वाला नहीं है। और भ मतलब भय, और म मतलब मृत्यु। यह है पौरव संसार, यह है भौतिक संसार, यह है भववाटिका। और इसके परे आध्यात्मिक जगत है जहां पर यह सब नहीं है। तो भौतिक संसार का तुलना इस संसार यहां पर दिया गया है उस मिराज या मरुभूमि में जल से। प्रभुपाद जी एक पॉइंट और बताए हैं कि ठीक है, मान लेते हैं कि संसार में केवल दुख ही दुख है, तो हम लोग अब आदत पड़ गई है। कितने लोग कहते हैं अब दुख सहने की आदत पड़ गई है, लेकिन रहना चाहते हैं यहीं पर, छोड़ना नहीं चाहते हैं। मैं कभी सोचता हूं, हरि बोल, कभी सोचना हूं कि व्यक्ति इतना दुख भोग रहा है, बेड पर पेशाब कर रहा है, पैखाना कर रहा है, लेकिन फिर भी भगवान का भजन नहीं करना चाहता है, क्यों? उनसे कहा जाए कि हरे कृष्ण जप कीजिए, सुन लेंगे, जप नहीं करेंगे। दुख भोग रहे हैं लेकिन जप नहीं करेंगे। जरूर कुछ ना सुख होगा नाथ जी, क्या सुख है, कुछ जरूर सुख होगा ना, कुछ सुख होगा। और वह जो सुख है, वह सुख है पुत्रादि सुख। उन लोगों को देख करके उनको सुख मिल रहा है, पत्नी को, बच्चे को, नाती पोते को देख करके सुख मिल रहा है, मर रहा है उसको सुख, और उसी सुख में रहना चाहता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं तुम चाहते हो रहना, लेकिन संसार का दो साइड है, क्वाइन है, टू साइड, वन इज दुखालयम एंड अदर इज अशाश्वतम। ठीक है, दुख से दोस्ती तो कर लिए हो, अब तुम्हें आदत पड़ गई है रहने की संसार में, जो कि दुखालय है, जन्म से ही दुख हुआ, लेकिन सहते 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 आदत पड़ गई है। कहते हैं ना, आदत पड़ गई है, किसी को गाली सुनने की आदत पड़ जाती है, किसी को मार सुन के आदत पड़ जाती है, किसी लोगों को, जैसे ये बिजली का करंट है, मैं कहीं पेपर में पढ़ रहा था कि एक लड़का था, वो बिजली करंट से पकड़ लेगा, मुंह में खा लेगा। चाइना में लोग सांप बिच्छू को पकड़ खा लेते हैं मुंह में, कोई तो असर नहीं पड़ता है, वो आदत पड़ गई है। हम लोग देख करके भाग जाते हैं, डर लगता है कहीं सांप दस गया तो मर जाएंगे, बिजली पकड़ी तो करंट मारेगा, आदत पड़ गई है। तो आप लोग समझ सकते हैं, दुख सहने की भी आदत पड़ती है लोगों को, डालना पड़ेगा आदत संसार में, यदि भजन नहीं करेंगे तो, भजन नहीं करेंगे तो डालना पड़ेगा। तो संसार में दुख ही दुख है, और यदि दुख का कोई आदत डाल भी लेता है तो यह संसार टेम्पररी है, अशाश्वतम, जाना तो सबको है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वमाम। भगवान कहते हैं संसार अनित्य है और दुख ही दुख है, दोनों हाथ में लड्डू नहीं, दोनों हाथ में दुख ही है,
तो इंटेलिजेंट वही है जो भगवान का भजन करता है, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य, मिल गया है मयस्समा। भगवान कहते हैं मेरा भजन करो, सुखी रहना है तो। इस संसार सुख का संसार नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे टॉयलेट में जाओ, पास ए स्टूल एंड कम आउट, फिनिश योर जॉब। संसार में आए हैं, कुछ काम है कर करके, गेट आउट। डोंट ट्राई टू मेक इट सुखालयम। जिसने बना दिया है वो कहता है दुखालय है। एनीवे, इस श्लोक पर बहुत बातें की जा सकती है, लेकिन मुझे आदेश दिया गया है भजहरि प्रभु के द्वारा कि थोड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूशन नरोत्तम के ऊपर बात किया जाए। तो यह जो श्लोक है ये बहुत सुंदर है, जो विषय वस्तु हम बोलने जा रहे हैं उसके संबंध में। ये तो क्लियर हो गया, यहां पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि यह संसार कैसा है। ये संसार दुख का संसार है, लेकिन इसके पीछे लोग पागल बन करके दौड़ रहे हैं। विषय विषयान उपधावती दौड़ रहे हैं, व्यसन लो लुपह, ये डिबोची लोग दौड़ रहे हैं उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जो उनका है ही नहीं। समझते हैं कि सुखी होऊंगा, लेकिन वे हैं दुखी। इस दुख को सब लोग नहीं समझ सकते हैं। जैसे कोई पानी में है तो कितना पानी है या वो डूब रहा है, क्या हो रहा है, कौन कितना दिन जा रहा है, पानी से नहीं देख सकते हैं। जो ऊपर रहता है वो देख सकता है। तो जो इस संसार में स्ट्रगल कर रहा है वह व्यक्ति नहीं समझ पाएगा कि मैं दुखी हूं। चोर नहीं समझता है कि मैं चोर हूं, दूसरा लोग समझते हैं कि चोर है। दुखी व्यक्ति दुख होता भी है तो उसका निवारण करने के लिए सब प्रयास करता है। यदि कोई प्रयास नहीं सब विफल हो जाता है, कोई प्रयास सफल नहीं होता, भगवान की पढ़ाता है कि भगवान हमारा दुख का निवारण कर दो। लेकिन प्रयास करता है दुख के निवारण का, लेकिन अपने से निवारण नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका हाथ पैर सब बंधा हुआ है। कि कोई तैरना जानता हो लेकिन हाथ पैर बंधा हो और समुद्र में फेंक दो तो तैर नहीं सकता है। कोई व्यक्ति चाहिए उसका हाथ पैर खोल सके। तो जो उपधावती जो लोग हैं, जो दौड़ रहे हैं और समझते हैं सुखी हो जाऊंगा लेकिन दुख भोग रहे हैं, उनके उनके ऊपर दया करते हैं वैष्णव का। वैष्णव जो होते हैं पर दुख दुखी हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते समय कहते हैं, नामे रति जीवे दया वैष्णव सेवन या छाड़ी धर्म नाही सुना सनातन। वैष्णव का धर्म यही है, नामे रति, नाम में प्रेम हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और किसका नाम में कितना रति है इसका पहचान भी है। जिसका जितना नाम में रति होगा वह पति जीवात्माओं के उद्धार के लिए उतना ही ललायित होगा। जीवे दया प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी को कितना दया था, नारद मुनि इन्हों कितना दया था। चैतन्य मंगल में वर्णन किया गया है कि नारद मुनि जब भौतिक संसार के पति जीवात्माओं को देखे और कलयुग का केवल चिंतन करने लगे तो रोने लगे, और रोते रोते द्वारका गए। ऐसा रो रहे थे कि रुक्मिणी भी लगी रोने। और इस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु आए पति जीवात्माओं पर कल्याण करने के लिए। लेकिन वह हुआ नारद जी जब दुख देखे तब, और अपने दुख को ट्रांसफॉर्म कर दिए, जीवात्माओं के दुख को रुक्मिणी जी में ट्रांसफॉर्म किए और रुक्मिणी जी उस दुख को भगवान कृष्ण में ट्रांसफॉर्म किए द्वारकाधीश में, और इस प्रकार से द्वारकाधीश चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। तो दुख से तो नामे रति, किसका कितना रति है नाम में, इसका प्रमाण है जीवे दया। और जीवों पर दया क्या है? कोई कहता है रोटी कपड़ा मकान फिलंथ्रोपिकल एक्टिविटी, वो भी दया है। वो जीवे दया नहीं है, वो देही दया है। जीवे दया मतलब जो आत्मा देह स्वीकार कर लिया है वो जीव कहलाता है। तो उस जीव पर जो कि संसार में फंस गया है उस पर दया करो, जिससे कि वह जीव यहां से निकल सके। और सबसे अच्छा दया है वह है ज्ञान देना। सबसे अच्छा दया है ज्ञान देना, क्या सही है और क्या गलत है यह बताने के बाद। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है, आखिर सब जीव इंडिपेंडेंट है। भगवान भी पूरा गीता का उपदेश अर्जुन को दे दिए, ज्ञान दिए, और तो कहते हैं भैया तुम्हें जो करना है तुम करो, यथेच्छसी तथा करो, जितना कहना था मैं कह दिया, अब तुम्हें जो करना है वह तुम करो। तो हम लोगों का धर्म है लोगों को ज्ञान देना, और बेस्ट मींस है ज्ञान देने का वह है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। प्रभुपाद जी कहते हैं तुम्हारा एक घंटा का प्रवचन क्या करेगा, लेकिन ये पुस्तक वहां जा सकता है जहां हम नहीं पहुंच सकते। यहां से गल्फ कंट्री जाना हो, चाइना जाना हो, रसिया जाना हो, तो वीसा का प्रॉब्लम है, लेकिन ये किताब को चाइना रसिया जाना है तो किताब के लिए कोई वीसा की जरूरत नहीं है। पुस्तक वितरण किया जाए, ज्ञान दिया जाए, ये संसार जो है असत संसार, अस्तो मा सुदगम्यम तमसो मा ज्योतिर्गमयम मृत्यु मा अमृतगमयम तमसो मा ज्योतिर्गमयम। तमस संसार से लोगों को ज्योति मिलाया जाए, और ज्योति क्या है? कृष्ण सूर्य सोम माया होयम धकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। लोगों को लाओ कृष्ण कॉन्शियसनेस में, और कृष्ण कॉन्शियसनेस में लाने का सरल तरीका है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। मैं ब्रजहरि प्रभु और गोपेश्वर प्रभु से यही कह रहा था कि आज मैं कहूंगा बुक डिस्ट्रीब्यूशन का टेस्ट। शुरू शुरू में थोड़ा लेजी लगता है, कितना अच्छा है, प्रसाद मिलता है, आश्रम में आराम करने का होता है, इत्यादि इत्यादि, ये लेजीनेस है। लेकिन एक बार यदि हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में निकल जाए तो खाना पीना सब पता नहीं कहां चला जाता है, वो डिमांड जो है, नीड जो है, वो खत्म हो जाता है। मैं उदाहरण देता हूं, उसका मॉर्निंग वॉक के समय, मैं मॉर्निंग वॉक करता हूं, इसका एक्सपीरियंस है। कभी कभी थोड़ा लेजीनेस लगता है, थोड़ा थक गया हूं, लेकिन जब शुरू करते हैं वॉक करना और थोड़ा जब शरीर गर्म होता है तब तो वॉक करने का मन करता है। खूब अच्छा से वॉक कर लो, जब हो जाता है फिर दिन भर फ्रेश फर्स्ट क्लास। वैसे ही यदि बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आउट होएंगे हम लोग, बाहर निकलेंगे और करना शुरू करेंगे, एक पुस्तक, दो पुस्तक, तीन पुस्तक, चार पुस्तक, फिर देखो कैसे एनर्जी आता है। ये स्पिरिचुअल एनर्जी है, मटेरियल है, मॉर्निंग वॉक से शरीर के लिए शारीरिक एनर्जी आता है, लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी आता है। प्रभुपाद जी बॉम्बे में थे, कार्तिकेय महादेविया के घर पर थे, उस समय जुहू में राधा रास विहारी का स्थापना हो गया था और बहुत परेशानी थी, कोर्ट केस ए ओ नायर चिटिंग करने का प्रयास कर रहे थे। प्रभुपाद जी बहुत डिस्टर्ब थे, बहुत डिस्टर्ब थे, और भक्तों से कुछ बात कर रहे थे कि क्या करना चाहिए, भगवान को वहां पर आमंत्रित कर दिए हैं, वहां से हटा भी नहीं सकते हैं, ऐसा ही बात हो रही थी। तब तक से रामेश्वर महाराज का प्रभुपाद जी को पत्र मिला जिसमें लिखा हुआ था कि 3 दिन में वे लोग 17,000 कृष्ण बुक वितरित किए। जब प्रभुपाद जी इसको सुने तो बैठ गए तुरंत, नाउ आई विल फाइट, प्रभुपाद नाउ आई विल फाइट। तो प्रभुपाद जी को एनर्जी मिला यह रिपोर्ट सुनकर करके मुक्ति शिव संघ का। ये प्रभुपाद जी का स्पेशल कृपा है दिसंबर महीने में मुक्ति शिव संघ करने का, यदि कोई करना चाहे तब, कोई करना चाहे तब, जो प्रभुपाद जी का कृपा प्राप्त करना चाहता है उसे चाहिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना। एक बार प्रभुपाद जी की कृपा को बतला रहा हूं। एक बार सुदामा महाराज सैन फ्रांसिस्को ने डिट्रॉयट में पुस्तक वितरण करने के लिए पहले दिन निकले, वो अफ्रीकन अमेरिकन थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए पहले दिन निकले और डिट्रॉयट में बहुत ब्लैक लोग हैं, तो उन्होंने एक ब्लैक व्यक्ति कहा कि रुकिए आपसे कुछ मैं बात करना चाहता हूं। वह ब्लैक व्यक्ति हरे कृष्ण वालों के विषय में जानता था, ये जो ही पुस्तक उसकी तरफ बढ़ाए कुछ बात करने वाले थे कि उसने एक मुक्का उनके चेहरे पर मारा, जोर से मारा, बूम वो गिर पड़े। ब्लैक थोड़ा हैवी होते हैं, मारा गिर पड़े, बेचारे बेहोशी से हो गए, बड़े डिमोरलाइज हो गए, क्या करो ये हमसे नहीं होगा, ये हमसे नहीं होगा। तब तक से उन्हें याद आया कि प्रभुपाद जी कहते हैं यदि कोई व्यक्ति मेरा पुस्तक वितरण करता है तो मैं उनसे ज्यादा प्रसन्न होता हूं, आई बिकम वेरी प्लीज समबडी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक। यह बात सुने श्रील प्रभुपाद की जय, और उठे और पुस्तक वितरण करना शुरू किए, एंड ए ग्रेट सक्सेस दैट डे। यह प्रभुपाद जी कृपा। उसी प्रकार से त्रिपुरारी महाराज का, जब त्रिपुरारी प्रभु जब नया नया भक्त बने तो पहले दो ही सर्विस था, हरिनाम और बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो भक्त लोग हरिनाम जाते थे और वहीं पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, तो त्रिपुरारी भी हरिनाम जाते। और एक दिन वे गए देखने के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। जब वो आए तो भक्त ने पूछा, दूसरा भक्त जो लीडर था सार्वभौमा प्रभु, उन्होंने पूछा कि हाउ मेनी बिग बुक यू डू टुडे, ही सेड नन। तू कितने बड़ा पुस्तक वितरण किया आज, बोला एक भी नहीं। हाउ मेनी डिड यू ब्रॉट विथ यू, कितना अपने साथ में बेचने के लिए गए थे, बोला कि नन। तनसे प्रभु यू आर इन माया, आजकल किसी को माया बोलो ठीक है आप इन खुश रहो मैं माया में रहो कोई बात नहीं, पहले किसी को कोई बोल दे कि प्रभु यू आर इन माया शरीर में आग लग जाता था, और कोई किसी को नॉनसेंस और रास्कल बोलो झगड़ा हो जाएगा। आजकल डेली नॉनसेंस रास्कल बोलो कोई तकलीफ नहीं है, चलता है कि हम लोग हो गए उस प्लेटफॉर्म पर, हो गए हम लोग माया में है, इसलिए कोई कहता है प्रभु यू आर इन माया, नो प्रॉब्लम, हम सहन करेंगे, हम सीख लिए कैसे सहन करना है, पश्यम अपि न पश्यति, अब सहन कर लेंगे, बहुत लोग माया में कर। लेकिन उन दिनों ऐसा बात नहीं था, उन दिनों कह देना किसी को कि प्रभु यू आर इन माया, दैट वॉज गिविंग स्पेशल एनर्जी टू कम आउट ऑफ द माया, नॉट टू रिमेन इन माया। आजकल भी कुछ महाराज से, गोपाल कृष्ण महाराज से मेरा कुछ अर्मिल होता है तो कहते हैं यू आर इन माया, आज ही महाराज कहते हैं। तो उन दिनों का एक टॉनिक था बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का, तो सब त्रिपुरारी। प्रभु दूसरे दिन क्या किए कि कुछ किताब लेकर गए, तीन चार किताब लेकर गए, इसमें एक टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य लिए थे और सब छोटा छोटा किताब। तो छोटा छोटा किताब बेच रहे थे, तब तक से एक लेडी आई और उसने कहा वो भूलिए गए थे कि बड़ा पुस्तक वितरण करना मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस है, भूल गए थे। तो लेडी ने कहा व्हाट इज दैट बिग बुक, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि यह है टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य। तो फिर वह पूछा कि इसका मतलब क्या है, तो पता नहीं पहले पुस्तकों में बहुत पिक्चर थे, अभी थोड़ा बीबीटी वाले कंजूस हो गए हैं, पैसा ज्यादा लगता है लगता है, थोड़ा पुस्तक में पिक्चर कम कर दिए हैं, पहले बहुत पिक्चर थे। इनफैक्ट मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रभुपाद जी बड़े एक्सपर्ट हैं सभी कार्यों में, क्योंकि शुद्ध भक्त जो होते हैं एक्सपर्ट होते हैं सभी प्रकार से। पुस्तक वितरण करने में भी प्रभुपाद जी एक्सपर्ट हैं। मैं त्रिपुरारी कथा को यहां थोड़ा मुठ करता हूं, प्रभुपाद जी से बात करता हूं। आप लोग इंडिया में जितने भी धार्मिक पुस्तक है, गोरखपुर के पुस्तक, गीता हो भागवत हो, आपने देखा उसमें कोई फोटो नहीं, गीता में कोई फोटो नहीं ऊपर। अब स्कान का इमिटेशन कर करके लोग फोटो डालना शुरू कर दिए, पहले फोटो नहीं था। प्रभुपाद जी जानते थे कि सीइंग इज बिलीविंग फॉर मटेरियलिस्टिक, संसारिक व्यक्ति लोग देखेंगे तो विश्वास करेंगे, तो ये जो फोटो देखेंगे तो अट्रैक्शन होगा, ब्लैंक कवर रहेगा कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, फोटो अट्रैक्शन का कारण है। वैसे ही अन्य जितने फोटो हैं, ये फोटो इतने अच्छे अच्छे ग्लॉसी पेपर है, फर्स्ट क्लास, दिखने में अच्छे लगते हैं, है? पहला अट्रैक्शन तो फोटो से ही हो जाता है। तो प्रभुपाद जी का एक एक्सपर्टीज है। प्रभुपाद ने कहा भी कि दीज पिक्चर्स आर विंडो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक संसार को देखने का ये झरोखा है, वहां से देख सकते हैं आध्यात्मिक संसार को। जब सर्वप्रथम कृष्ण बुक आया, प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को में थे, करीब 20,000 लोग आए थे रथ यात्रा में, तो जब पुस्तक आया तो प्रभुपाद जी देख रहे थे, डिबूटी लोग टूट पड़े, और कुछ ही समय प्रभुपाद जी अनाउंस हुआ और प्रभुपाद जी प्रथम बार कृष्ण बुक का वितरण किए और वहां से शुरू हुआ। तो पहला दिन तो हो गया, ये प्रभुपाद जी कर लिए, हम लोग कैसे करेंगे, ये भक्तों के लिए ये था। तो कृष्ण बुक बड़ा पुस्तक था, पहले सिल्वर कवर था, स्पेशल साइज था वो, और ब्यूटीफुल पिक्चर्स थे, तो कृष्ण बुक बहुत बिका। एनीवे तो मैं पिक्चर कर रहा, प्रभुपाद जी का एक्सपर्टी था कि प्रभुपाद जी अपने पुस्तकों में पिक्चर का भरमार लगा दिए, टॉप टू डाउन, आगे भी पीछे भी बीच में भी, कहीं भी जाए लोग पिक्चर देखे, और एक पिक्चर जो होता है हजार वर्ड के समान होता है। तो त्रिपुरारी केवल टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य के फोटो को दिखा करके वो पुस्तक बेच दिए, कुछ बोले फोटो दिखा करके, जब पुस्तक बेच दिए तो बड़े खुश थे, बड़े खुश थे, और आए और सर्वभाव प्रभु से बोले कि आज मैं एक टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य बेचा और पांच छोटा पुस्तक बेचा। तो उसने कहा नाउ यू आर आउट ऑफ माया, और खुश हो गया, नाउ आई एम आउट ऑफ माया। तो फिर नेक्स्ट डे से, दैट्स वाई त्रिपुरारी महाराज वाई वन ऑफ द बेस्ट बुक डिस्ट्रीब्यूटर इन द वर्ल्ड। केशव भारती प्रभु बता रहे थे एक बार कि वे सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर पुस्तक वितरण कर रहे थे, तो वे सोचे कि मैं बड़ा जेंटिल हूं, लोगों से जेंटली व्यवहार करता हूं, बड़ा नम्र हूं, लोग हमसे हाथ मिलाएंगे। ऐसे ही वे डे ड्रीम में जी रहे थे, है? कि मेरा आचरण अच्छा है और लोग आएंगे हमारे पास, पुस्तक लेंगे, हाथ मिलाएंगे, मैं बहुत पुस्तक बांट सकता हूं। और देख रहे थे, आधा घंटा बीत गया कोई नहीं आया, एक घंटा बीत गया कोई नहीं आया। तब तक से त्रिपुरारी बगल में 8-10 पुस्तक वितरण कर चुके थे। अब बेचारे बड़े मरोस हो गए, एक घंटे के बाद बैठ गए कि कोई नहीं आ रहा है पुस्तक वितरण करने के लिए। तो त्रिपुरारी ने देखा, अरे ये तो हमारा एक सैनिक घायल हो गया, बैठ गया। तो त्रिपुरारी गए वहां पर और कहे कि भगवान चैतन्य महाप्रभु और भगवान नित्यानंद प्रभु कृपा प्राप्त करो और प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना है तो उठो चलो पुस्तक वितरण किया जाए। ठीक वैसे ही जैसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उठो और लड़ाई करो। उन्होंने कहा और वे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को याद किए और मन में धारणा हुआ प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए और वे उस दिन पुस्तक में आए, वितरण करने आए और फिर पीछे नहीं देखे। तो अहंकार में आ गया था जो कि आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। इस प्रकार से बहुत सी कथाएं हैं भक्तों के बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। प्रभुपाद जी का स्लोगन है डिस्ट्रीब्यूट बुक, डिस्ट्रीब्यूट बुक, डिस्ट्रीब्यूट बुक। लॉस एंजलिस में प्रभुपाद जी स्लोगन दिए। तो हम लोगों को इसको अपनाना था, यही है जीवे दया। मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। जब हम लोग यहां पर बॉम्बे में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, मैं मॉर्निंग वॉक का उदाहरण दिया कैसे एनर्जी प्राप्त होता है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन से स्पिरिचुअल एनर्जी प्राप्त होती है। 1982 में भगवत गीता का 6 अध्याय आया था, हिंदी ट्रांसलेशन होता है, मराठी और हिंदी दोनों, 6-6 अध्याय का था, ब्लू जैकेट भगवत गीता था। हम लोगों के पास महिंद्रा का मेटाडोर था और एक जीप था। किसी प्रकार से मुझको जीप मिल गया था, लेकिन 2-3 पार्टी के साथ में, मुलून थाना। हम लोग 9 बजे 8:30 बजे पहुंचते थे वहां पर और किताब बाहर निकाले उतने में एक बंडल किताब गया, दूसरा बाहर निकाले एक बंडल गया, तीसरा बाहर निकाले एक बंडल गया। आमची आने बगा बगनाची हरकत ना है, भगवत गीता फक्त 10 रुपेला है, यही हम लोगों का स्लोगन था और कुछ नहीं ज्यादा बोलना था। और प्रभुपाद जी का टेप था। तो इस प्रकार से कैसे जा रहा था, इतना उत्साह हो रहा था, इतना उत्साह हो रहा था कि गाड़ी जाओ लेकर के आओ भाई, दोपहर तक सब गीता खत्म भी आओ है, तो उत्साह हो रहा था। बाद में 85 के बाद में जब भक्त डायरेक्टर पूरे भक्तों के साथ में हम लोग टोली जाती थी पुस्तक वितरण करने के लिए। बाद में एक नर्मदा महाराज का हमारा कंपटीशन होना शुरू हुआ है। हम लोग 12 बजे रात को आते थे और सुबह, आजकल बीबीटी वालों के पास बहुत पैसा हो गया है तो वे लोग एडवांस में प्रिंट कर देते हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले पुस्तकों की बड़ी कमी थी, पुस्तकों की कमी थी। तो कॉटन एक्सचेंज में मेरा टेबल था और रोकड़ा हनुमान में नर्मदा महाराज का। कंपटीशन था पुस्तक वितरण करने का। 12-1 बजे रात को आने के बाद भी सुबह जल्दी उठ करके, और ट्रक आया हुआ होता था या संकीर्तन जाकर के किताब जो मिल जाए लेकर के गाड़ियों को बांध दो। कभी कभी मैं चोरी भी करता था। वो महाराज कभी कभी रात को ही किताब लेकर अपने गाड़ी में रख लेते थे, सुबह गया किताबें नहीं है तो उनका गाड़ी खोलकर किताब लेकर के अपने गाड़ी में रख लेता था और उनसे पहले चल देता था। शाम को झगड़ा होती थी, कोई बात नहीं चलता है, पुस्तक तो वितरण हो गया ना, पुस्तक वितरण हो गया। अमोघ लीला प्रभु थे, भीमा प्रभु थे, वो लोग समझाते थे कोई बात नहीं, पुस्तक वितरण होना चाहिए, पुस्तक वितरण हो गया। वास्तव में एनर्जी था, वो एनर्जी था। फिर वहां से लेजी इंटेलिजेंट डेवलप किया मैं कॉटन एक्सचेंज से, कालवा देवी मड़वारियों का गढ़ है कपड़े वालों का। तो राधा कृष्ण प्रभु लोगों को टेबल पर छोड़ दिया और बुक बैग लेकर के दुकान दुकान वहां से ऑर्डर लेना शुरू किया, 10 किताब 5 किताब। महाराज को हमेशा मैं नॉकआउट किया है जितना दिन हुआ पुस्तक वितरण कर करके। वास्तव में वो आनंद था, केवल आनंद कंद, वह आनंद था जो वास्तव में प्रभुपाद जी का कृपा प्राप्त करना चाहता है, आनंद प्राप्त करना चाहता है। जाओ आजकल बल्कि टफ कंपटीशन है, उन दिनों कंपटीशन था, हम लोग सोचे उन दिनों कंपटीशन था, आजकल टफ कंपटीशन है, आजकल भक्तों में नहीं है, संसारिक लोगों से है, संसारिक लोगों से है। इस प्रकार से जब दिसंबर का महीना बीत जाता था, कंपटीशन अंदर तो था, वर्ल्ड में कंपटीशन था, स्टेट में कंपटीशन था, जसोमती नंदन प्रभु का हम लोग कंपटीशन, बूम बाम बूम बाम को कंपटीशन था, रलगुन राइट, हम लोग सूरत जाते थे, कृष्णराज प्रभु कहां है, मजा आता था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो उसके बाद आओ, जो हारेगा वो पार्टी देगा, और हर एक साल गुजरात हारता था तो पार्टी देता था, नहीं जीतते भी थे। अरे मैं सूरत हम लोग गए थे कुश्ती करना, फिस्ट मनाना कंपटीशन के बाद, और जब हम हार जाते थे तो अपना कर्जात फार्म था, चलो कर्जात फार्म में फिस्ट देंगे और नदी में नहाएंगे, लेकिन वही मजा था, रियल इट वॉज गुड। आई मीन आई सजेस्ट बजरी प्रभु दिस टाइम लेट्स हैव वंडरफुल बुक डिस्ट्रीब्यूशन एंड विल टेक एवरीबॉडी टू आवर तलाशरी फार्म और वहां कुश्ती करेंगे। प्रभुपाद ने कहा स्विमिंग एंड रेस्लिंग दो चीज वैष्णव का खेल है, तो आप कुश्ती करेंगे, चतुर्भुज प्रभु चलो हम और आप कुश्ती करते हैं यहीं पर। वास्तव में इस काम के तो आनंद है ही, लेकिन इस आनंद का अनुभूति किए नारद मुनि, प्रहलाद जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी, प्रभुपाद जी, ब्रज की गोपियां, सब लोग इस ज्ञान वितरण के आनंद का अनुभूति किए। आनंद तब होता है जब कोई व्यक्ति कृष्ण का प्रिय हो जाता है, प्रिय मतलब मर जाना नहीं, प्रिय मतलब प्यारा हो जाता है। भगवान गीता में कहते हैं न जब तस्मात मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृतमः, उस समान उस व्यक्ति के समान कोई मेरे लिए प्रिय नहीं है, न था और न होगा, जो व्यक्ति इस भगवत गीता का भक्तस्य अभिधास्यति भक्ति मई प्राकृतवा, जो भक्ति पूर्वक इसका वितरण भक्तों में करता है, है? भगवान की वाणी है गीता में, ब्रज की गोपियां इसको गा रही हैं इस ज्ञान को, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीणितम कल्मषापहम श्रवाण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। बी भूरिदा, बी मैग्नेनिमस, गो आउट एंड डिस्ट्रीब्यूट दिस बुक्स। तप्त जीवनम, संसार में दुखित है, वे डे ड्रीम में रह रहे हैं, उनको दुख को दूर करना है, तो तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, भगवान की जो कथाएं श्रीमद् भागवत के पन्नों पर लिखा हुआ है, भगवत गीता में उनका उपदेश लिखा हुआ है, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य शिक्षामृत, इन बड़ी पुस्तकों में जो कृष्ण मुख, ये संसार के लोगों के दुख को दूर करने वाला है। गोपियां गाती हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भारत भूमित हिल मनुष्य जन्म जार जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, जन्म की सार्थकता इसी में है, परोपकार करो, लोगों को पुस्तक वितरण करने से कोई अच्छा परोपकार नहीं है। नामे रति जीवे दया वैष्णव सेवन, श्री प्रभुपाद जी वैष्णव है, उनका सेवा करें, वे चाहते हैं कि जब तक से मेरे पुस्तकों का वितरण होगा, सो लॉन्ग माई बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, आई विल स्टे विथ यू। प्रभुपाद जी हमारे साथ हैं इन पुस्तकों के वितरण के द्वारा। प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज के सामने भगवान नरसिंहदेव आए हैं, नरसिंहदेव से प्रार्थना करते हुए प्रहलाद महाराज कहते हैं, नैवेदिजे पर दुरक्तया बैतरणिया तदवीर यगायन महामृतमग्न चित्त सोचे ततो विमुखचेत स इंद्रियार्थम माया सुखाय वर्मम उदवहतो विमुद्धान। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे भगवान, मुझे अपने लिए कोई चिंता नहीं है, संसार दुखालय है, यहां दुख ही दुख है, इसे मुझे कोई डर नहीं है। न एव उद्विज, एव मीन्स सर्टेनली और उद्विज मीन्स डिस्टर्ब। हे भगवान, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हूं। क्यों? पर दुरत्तया बैतरणिया, इस बैतरणी जो कि बड़ा वैतरणी को पार करना, इस संसार को, विषय संसार को पार करना, पर मतलब पार करना, दुरत्तया अत्यंत कठिन है, वैतरणिया ये भौतिक संसार को, इसे मैं नहीं डरता हूं। क्यों क्यों नहीं डरते भाई? तदवीर जगायन महा अमृत मग्न चित, ये आपकी जो कथा कीर्तन है ये भगवान का कृपा है, भगवान कृपा करके ये लीला किए हैं, भगवान की लीला पति जीवात्माओं पर कृपा है। अनुग्रहाय भूतानां मांसम तनुमाश्रितम्, भगवान जीवों पर अनुग्रह करने के लिए आकर के लीला किए। क्या भगवान चाहते तो प्रथम दिन कंस को नहीं मार सकते थे? मार सकते थे, लेकिन भगवान इतना साल लगाए, क्यों? लीला करने के लिए, ताकि जीव उसे संतुष्टि को प्राप्त कर सके, आनंद को प्राप्त कर सके। तो ये लीलाएं हैं, इन्हीं का वितरण करना है हम लोगों को। प्रार्थना का तदवीर गायन महा अमृत मग्न चित, मैं तो उसी में मग्न रहता हूं आपका गुणानुवाद करने में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। इसीलिए मुझे संसार से कोई डर नहीं है, संसार बड़े खतरनाक, अपने जगह पर रहे, हमें कोई तकलीफ नहीं, हम तो पार हो जाने वाले हैं। तो मानो भगवान कहता तुम यहां पर क्यों रहना चाहता, चलो मेरे साथ में। कहते नहीं नहीं अभी नहीं जाऊंगा, अब होकर के आइए, बाद में आऊंगा। क्यों? सोचे तो विमुख चेतस इंद्रियार्थ, हे भगवान, मैं तो उन मूर्खों के विषय में चिंतित हूं जो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, माया सुखाय भ्रम उद्वहतो विमुद्धान, एक के ऊपर एक प्लान बना रहे हैं, माया संसार में डुबकी लगा रहे हैं, डूब रहे हैं, लेकिन ऐसे भ्रमित हुए हैं, प्लान बना रहे हैं, कैसे मैं सुखी हूंगा, कैसे मैं सुखी हूंगा। मैं तो उनको ले आना चाहता हूं, इसलिए मैं रहना चाहता हूं, अपने लिए नहीं। तुम्हारा प्रहलाद नरसिंह भगवान कहते हैं, अरे बहुत साधु लोग हैं, कर लेंगे, चिंता मत कर, तुम चलो आओ आओ आओ, पुष्प विमान आ गया, चलो बैठो। कहते हैं प्राय नमुनय संयुक्त काम, हे प्रभु, जिनका आप नाम कह रहे हैं ना, प्राय देखा जाता है जितने ऋषि मुनि लोग हैं वो स्वार्थी हैं, स्व विमुक्त काम, वे अपना ही मुक्ति चाहते हैं, इसलिए क्या करते हैं, मौनम चरन्ति बिजने न परार्थ निष्ठा, वो जाकर के वृंदावन वास करते हैं। प्रभुपाद जी वृंदावन को लेकर गए, यही है बुक डिसीजन का स्प्रिट, टेक वृंदावन विथ यू, डोंट गो एंड बिकम भजनानंदी इन वृंदावन। हमने देखा है हमारे बहुत भक्त लोग जाते हैं वृंदावन में, बैठ करके बाद में व्यापार करना शुरू करते हैं, किसी को टूर दिखाते हैं, पैसा कमाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कोई क्या नाम स्टेट एजेंसी करना शुरू करता है, लैंड खरीदो बेचो, अरे बम्बई में करो अच्छा है, वहां क्या करने का, बिजनेस ही करना है। तो वृंदावन सबके लिए नहीं, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन तबे हम हे रूप वृंदावन, वृंदावन उनके लिए जिसकी विषय वासना खत्म हो चुकी है। प्रहलाद महाराज कंडेम करते हैं वैसे लोगों को जो कि जाकर के भजन के बहाने वृंदावन बात करने का प्रयास करते हैं, अपना स्वार्थ चाहते हैं। प्रभुपाद जी चाहते हैं उनका सिचुएशन अच्छा है राधामंदिर मंदिर में, लेकिन वृंदावन को साथ में लेकर के गए और सब लोगों को वृंदावन लाए, ये है वृंदावन मूड।
लाइक द मौनम चरंती
बिजने,
वे दूसरे का परवाह नहीं करते हैं, केवल अपना परवाह कर करके एकांत वास करना चाहते हैं। न अपराध निर्था,
दूसरे के लिए जानने में जाए दूसरे भले नरक में जाए कोई बात नहीं, अपने को जाने दो।
ये वैष्णव मूड नहीं है। वैष्णव मूड है लोगों को साथ लेकर चले। न एतान विहाय कृपणा मुक्ष एको,
हे प्रभु मैं इन लोगों को यहां अकेला छोड़कर के अकेला नहीं जाना चाहता हूं। नान्यत्वस्य शरणम भ्रमतोन पश्चेत,
और मैं देख रहा हूं जब तक से ये लोग आपके शरण में नहीं आएंगे, जब तक से आप इन पर अनुग्रह नहीं करेंगे, तब तक से इन लोगों का कल्याण नहीं हो सकता है।
तो भगवान का अनुग्रह तब होगा जब हम इन पुस्तकों का वितरण करेंगे।
प्रभुपाद जी के पुस्तक का केवल मात्र टच लोग कर लेंगे, उनका कल्याण हो जाएगा।
प्रभु जी उनका ये, उन्होंने पुस्तक नहीं लिखा है, ये पुस्तक नहीं है, उन्होंने लिखा नहीं है, ये उनका प्रवचन है। इसमें गुरु और कृष्ण दोनों हैं।
जो व्यक्ति इसको ग्रहण करेगा उसका जीवन उद्धार हो जाएगा।
प्रभुपाद जी कहते हैं एक लेटर में कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज द बेस्ट मीन्स टू प्लीज कृष्णा,
भगवान को प्रसन्न करने का ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बेहतरीन तरीका है।
दुख की बात है आजकल हम लोग बातें नहीं कर रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, बहुत कम बात। पहले 90% बुक डिस्ट्रीब्यूशन बात होता था और कुछ दूसरा बात। आजकल कांग्रेगेशन प्रीचिंग, यूथ प्रीचिंग, ए प्रीचिंग, ओ प्रीचिंग हो रहा है,
सब ठीक है।
लेकिन सब ठीक है तब तक जब तक से इन पुस्तकों का हम अध्ययन करें और इसका हम वितरण करें।
दोनों चीज, अध्ययन करना और वितरण करना।
एक ही काम अध्ययन करेंगे तो मौनी और बन जाएंगे, अपना स्वार्थ देखेंगे, लेकिन वितरण करेंगे तो परमार्थ देखेंगे। प्रहलाद महाराज का मूड आएगा वितरण करने से,
और यही वैष्णव का धर्म है। नामे रति जीवे दया वैष्णव सेवन, जीवे दया पुस्तक वितरण जो है जीवे दया है।
प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो पुस्तक वितरण करता है उसका बैक होम बैक टू गॉडहेड गारंटेड है, कोई दो राय नहीं है।
और आज भी ऐसे भक्त हैं, राधा कुंड माता जैसी अन्य भक्त लोग हैं जो कि पुस्तक वितरण में लगे हुए हैं,
हैं? ये विश्वास है।
अवश्य राखीब कृष्ण विश्वास पालन,
लोगों का श्रद्धा है लेकिन विश्वास बड़ा कम है।
मैं उदाहरण देता हूं, श्रद्धा और विश्वास का बाद में बंद कर दूंगा, कहने के लिए बहुत कुछ है। माल पानी लेकर गया हूं लेकिन समय घड़ी आगे चला जा रहा है।
लोगों का भगवान में श्रद्धा है, मंदिर में आते हैं, है ना, मंदिर में आते हैं श्रद्धा के साथ में, भगवान देखते हैं, अपना वॉलेट निकालेंगे हुंडी में डालने के लिए, तो उसमें 1000 रुपए का नोट है, 500 का है, 100 का है, खोजेंगे कि 10 रुपए वाला कहां चला गया, 10 रुपए वाला कहां चला गया,
आपने देखा है कि नहीं,
वो 1000 नहीं डालेंगे, खोजेंगे, नहीं चेंज होगा तो पत्नी से कहेंगे 10 रुपए तर दे दो, वो देती है तो हुंडी में डालेंगे 10 रुपया।
बीवी बाहर गई, वो ज्वेलरी का दुकान हुआ, बीवी बोला कि वो ज्वेलरी खरीदना है, तो पूरा वॉलेट निकाल देख देंगे दे उसको, ले लो भैया पूरा वॉलेट निकाल बीवी को दे देंगे।
तो उसका विश्वास अपने पत्नी में है, भगवान में नहीं है।
भगवान में श्रद्धा है, विश्वास नहीं है।
यदि भगवान में विश्वास होगा तो पूरा वॉलेट यहां जाएगा और पत्नी को 10 रुपया, अदर ग्राउंड होगा।
तो लोगों में विश्वास तब जगेगा जब इन पुस्तकों का हम वितरण करेंगे, लेकिन उसके पहले हम में विश्वास होना चाहिए। यदि हम में विश्वास होगा कि प्रभुपाद जी का प्लेजर भगवान का प्लेजर है, जस्या प्रसाद भगवत प्रसाद हो, भगवान को प्रसन्न करने का तरीका है प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना, यदि हम में विश्वास होगा। ऐसा बात नहीं भगवान का हम पर विश्वास नहीं है, भगवान हम पर विश्वास है,
तो हम लोगों को विश्वास करना पड़ेगा भगवान में। यदि भगवान विश्वास प्रभुपाद की वाणी में, तब ये पुस्तक वितरण बहुत ज्यादा होगा। तो चलिए अब एक हफ्ता बाकी रह गया है, लेट अस गियर अप। मन में संकल्प कर लेना चाहिए, सब लोग मन में संकल्प कर लें, डबल इट। नेक्स्ट ईयर जितना किया था उसे डबल करेंगे। संकल्प करना अपना काम है, इसमें भगवान इंटरफियर नहीं करेंगे, लेकिन पूरा करना भगवान का काम है। संकल्प में मायर रहेंगे तो पूरा भगवान कहां से करेंगे। अनुमंता च, भगवान अनुमति देंगे। यदि हम जाएंगे कि हम 20,000 गीता बांटेंगे, 20,000 गीता बांटेंगे, तो उसके लिए प्लान ही था कैसे कैसे करें ताकि 20,000 बांट सकते हैं। तो भगवान जरूर अनुमति देंगे, लेकिन खोखला केवल सोचते रहेंगे वो भी ठीक है, खराब नहीं है, खराब नहीं है। मन में भगवान की सेवा के लिए सोच भी अच्छा है, लेकिन भगवान मूर्ख नहीं है, वो देखते हैं देखे सोचता रहता है, तो भगवान केवल मर्सी में अपने दिल में भी सोचते रहेंगे तुम्हारे विषय में, लेकिन असली कृपा नहीं देंगे। जब कृपा चाहिए तो पुस्तकों का वितरण करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जाय। श्रील प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन अर्थान की जाय। श्रील प्रभुपाद बुक्स की जाय। कोई प्रश्न? अभी एक घंटा और समय काफी तोड़ने का, चिंता मत करो, 10:30 तक है। एनी क्वेश्चन और कमेंट? यस मदर अदा कौन?
हाउ मेनी
ए पुट द माइक ऑन संदीपनी, व्हाट हैपेंड?
How many books are you going to do this year?
Well, you are...
I mean the whole temple. The whole temple, Mumbai. How many books this year? What's the target?
Hey, don't open your secret. She'll tell Jaso.
We defeated you in 1984, remember?
That's why I went to Karjap. Thank you. We did 1,50,000 last year, and I heard that you are going to take part in our side to defeat Jaso this year. So we'll do 2,00,000. If you stay here then.
Didn't you say you were going to double it?
Eh?
Didn't you say it was going to be double this year?
Well, I was saying each individual should think that way.
What's wrong with 3,00,000?
If each individual thinks to double it, it will become double. There's no use of Prajari Prabhu saying, oh, you will do 3,00,000. Individual had to do. So each individual had to make up their mind. Vishnurath had to make up his mind, Sulochan had to make up his mind, all the preachers, they had to make up their mind, I want to double it. But don't only sell the books and keep the book in godown, but distribute it, that is the real thing. Distribute it. Give out. Yes.
Actually, I had a dream once, and in the dream, Srila Prabhupada was...
Was it day dream or night dream?
It was a night dream.
Okay.
And in the dream, Srila Prabhupada was distributing all the books from my table.
Jai Srila Prabhupada ki jai. Well, even in day dream, connected to Krishna and Srila Prabhupada, or night dream, both are good. For a devotee, both dreams are good. Because it is real.
He was just yelling to me, bring more books, bring more prasad. And I was running, bringing the books and the prasad, and he was distributing it all.
Yes, this is one of the techniques of Mata. See, in Bhavanavaji Vrindavan, temple person, that time, she used to have prasadam and books. She gave out book and some prasadam. It's very
good. It looks like a miracle.
Yes.
You put the prasad and then you put the book and they can't say no.
Yes.
It's a trick that Srila Prabhupada has taught us.
Book and prasad together. win them through their tongue by giving prasadam.
Anytime I go with the books, I have so many books, and I think, oh, how will I ever distribute all these books? But then I remember the dream, and I remember, okay, Srila Prabhupada is distributing them, I'm just bringing them.
Yes. Yes, when we have this conviction, that's true actually. Prabhupada is one who inspires us to do things. We are inspired by Prabhupada through his follower, through his temple, through his book, through his Mahaprasad. Prabhupada is inspiring us in every way. So any devotee who wants to be inspired, take this blessing of Srila Prabhupada. The books will be distributed. Take the credit. Simply, take the credit. Any other question or comment? Yes, Sudha Prabhu. Oh, car ghar in competition, huh? Watch out.
Hare Krishna. As we were listening the wonderful class, the book distribution, inspirational notations from Devkinandan Prabhu, I would like to request all of you that in order to accomplish what he said and whatever you wish to accomplish, you must recognize the best of the devotees when they are coming among you, and you should be able to mentally, physically offer them dandavats so that you can take best of the blessings so that you can accomplish this wonderful task which you are going to do in the month of December. So Mother Radhakund is here, and she is a great Vaishnavi. With her physical life, he has shown the great renunciation. She has shown a lot of qualification of doing tapasya in Vrindavan, and yet pleasing the spiritual master by distributing the hardcore interest of Prabhupada, that is distributing books. So I would like to only humbly request, this is a Sunday mass gathering, and you all should once welcome her by chanting the holy name of the Lord 3 times, and then I will continue. Please raise your 2 hands and welcome her. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So Mother Radhakund has been doing a great service, and we are very happy to receive her here, and she gave a wonderful talk yesterday, as I came to know. But book distribution is the prime activity of ISKCON, and every devotee who has heard this lecture today, he should stay back and meditate today, the whole day, plan that how you are going to double your book distribution. And yet you should always keep in your mind that you don't make any offenses mentally, physically, and do your homework very nicely. And once you do this homework very nicely, how to distribute, you all have to learn that how to respect the Vaishnavas. Then you will all learn how do we please the Vaishnavas. If you please Prabhupada, the Vartaman Vaishnavas, they will also in turn bless you, and Prabhupada will be very, very happy. Ultimately you are connecting this pleasure, this happiness with Krishna, because Krishna also says in Bhagavad Gita, one who is my dear devotee, he will pass on this transcendental message to those who need it, who are recipients. And that's how you will be in line with the parampara. And that's the best way of pleasing the Vaishnavas. Book distribution is there. You should optimize your compassion all the time. But if you are not able to do it all the time, then Prabhupada gives us a wonderful period. This is called Christmas marathon time. December marathon is called Christmas marathon. Prabhupada used to say that. He optimized. He said, Jesus Christ optimized the compassion and he gave the best instructions to the people who were not ready to take it. But now, Prabhupada, this wonderful compassionate person, he went to the Western world, optimized his compassion to the Shunyavadis and he gave them the wonderful book distribution and gave them the Bhagavad Gita. So the same thing is we have to do. Now the whole India is in a completely, in a very, 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 very precarious situations. Politicians have deceived them. Corporate people have deceived them. The leaders are deceiving them. You have to make them only the actual leader available. That is Krishna Stu Bhagavan Swayam. This is the only thing. If they can read Bhagavad Gita without killing Krishna, Prabhupada many times says, these people are killing Krishna because the Vartaman, even so-called leaders, they are trying to keep Krishna away. But if you try to bring this Krishna back into the lives of these people who are bereft of Krishna, and this is the best humanitarian work. The so-called humanitarian works are completely sending cows to the slaughterhouses, human beings, their children to the slaughterhouses, so-called educational programs. But this is the actual program, book distribution. And this is, rise, oh, my friends, rise above and inspire people to give this Bhagavad Gita. As Devkinandan Prabhu said, they have got money for sense gratification. They have got money for honey and bunny. But you tell them that how you can make use of this money in distributing the Bhagavad Gitas. How many marriages, how many people, birthdays, cakes, this, that, you see that you give them the Bhagavad Gita. Prabhupada says, these Mayavadis have made Bhagavad Gita as table talk. But we are not here to make Bhagavad Gita as table talk. We are going to give this as an abhushan to those people who are bereft of Krishna. Let this Bhagavad Gita become abhushan of every citizen of India, and that will be the successful story of Bharat Varsha. You sons of Bharat Varsha, rise above these dualities, Maya, and distribute Bhagavad Gita. Then automatically we will do 1,50,000 Bhagavad Gitas. Last year, this year you will do 3 lakh Bhagavad Gitas. And let us do it. We are not separate. Khargar is part of Juhu. Mira Road is part of Juhu. So we all will collectively inspire each other and see that the Bombay should accomplish at least about 8 to 10 lakh Bhagavad Gitas. It is possible. It's possible. You can do it. You can do it. We can all do it. Thoda sa nidra, thoda sa ahar, thodi si parishram ki zarurat hai, to hum sab kuch kar sakte hain. Ahar ko parityag karein, sone ko parityag karein. Unhone bahut achi achi stories batayi aapko ki hum pehle kya karte the. Ye ahar aur nidra ko chhod ke bhuk vitran mein lag jate the aur yahi hamare jeevan ka aabhushan hai. और यही आभूषण है प्रभुपाद जी के परपट्स में जो हमारे जीवन को आभूषित कर देता है. जब तक आपके जीवन में ये आभूषण नहीं होगा, व्यर्थ है सभी वाक्य, व्यर्थ है वही परिश्रम, व्यर्थ है वही डिजिग्नेशंस जिस मैं समाया नहीं होगा कृष्ण का उपदेश और प्रभुपाद जी की प्रसन्नता.
हरे कृष्ण.
श्रील प्रभुपाद की.
आई हैव 8 स्टेप ऑन बुक डिस्ट्रीब्यूशन. Please take this mantra. In this month, we should simplify our need, such as eating, sleeping, etc. We should learn to simplify our need. We should learn to nullify our greed. We should not learn to amplify our activities to more and more. We should rectify our mistake. What we did last year, we will not repeat same thing. We should justify our expense, everything, you know, go by train, whatever, you know, just take more, you know, distribute more. We should certify our conduct, how I am doing, how many books I did. We should magnify book distribution, and we should glorify Srila Prabhupada ki jai. So these are the 8 steps.
So, one announcement. Tomorrow, there will be a special Sankirtan book distribution class in Prabhupada quarter. So, first 20 minutes, Prabhupada will speak on book distribution, and then Radhakund Mataji and Bisakha Mataji, the two stalwarts book distributor, those are here, they will also speak 20 minutes, and then we'll discuss among devotees, we'll give allot quota, how many parties, what is their quota, everything we'll discuss. So tomorrow there will be a special class, so all are requested to participate in the class tomorrow. Hare Krishna.
Srila Prabhupada ki jai.